Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Amit Goyal.
नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमित।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ निहारिका।
RBI's February meeting minutes highlight easing of monetary policy likely to boost household consumption, investment in housing and capital expenditure. Benchmark domestic indices register fall of over 0.5%. Sensex drops 425 points. Nifty closes below 22,800. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $75.78 per barrel.
आर्थिक सुर्खियों में, रिजर्व बैंक की फरवरी बैठक में मौद्रिक नीति को उदार बनाए जाने से घरेलू खपत, निवेश और पूंजीगत व्यय बढ़ने की उम्मीद। घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 425 अंक और निफ्टी 22,800 के नीचे दर्ज। और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $75.78 प्रति बैरल के आसपास दर्ज। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्या कहा।
वेल, लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट स्टोरी दिस इवनिंग। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैज सेड दैट ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कपल्ड विद गुड एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रोथ एंड वेरियस ग्रोथ सपोर्टिव मेजर्स एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट आर लाइकली टू बूस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ, एज पर द मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हेल्ड अर्लियर दिस मंथ, मिस्टर मल्होत्रा सेड फूड इन्फ्लेशन प्रेशर्स आर लाइकली टू सी सिग्निफिकेंट ईजिंग on robust kharif harvest arrivals, winter season correction of vegetable prices, and a promising rabi crop outlook. With CPI inflation for the financial year 2025-26 likely to settle at 4.2% and the GDP estimated to be around 6.4%, the governor said a rate cut at this juncture seems appropriate given the macroeconomic outlook. So, Puneet, if I can quickly bring you in on the story, let's talk about the agricultural output and agricultural sector growth that has been happening. Do you see any key factors for this?
So, Niharika, as we all know that last quarter, which was the third quarter for the financial year, there was a slight downtick in economic growth. And largely that downtick came on account of some tightening of monetary policy, uptick in inflation was there. And because we had a high base, so there was a slowdown in GDP. If we break up that growth, we'll find that it was at that time, it was the rural sector consumption which was actually slowing down. And urban consumption was still robust, but the agricultural side and the rural side, the growth was not there. Of course, that narrative has changed a little bit in the last couple of months. But broadly, that was the perception we had in third quarter numbers that we got. And fortunately, now, if you look at what RBI governor is saying, is that the rural economy seems to have rebounded. And there seems to be early green shoots of growth there. And it appears that agricultural numbers that we'll get, the growth numbers that we'll get, particularly from kharif crop and then rabi also, the prospects, they appear to be better. Clearly, if we see good growth in agriculture, if we see 4-6% kind of growth in agricultural sector, I'm sure the rural economy will pick up. And therefore, this optimism that the RBI governor has expressed that we'll see better numbers, particularly on agriculture side and rural growth side in the coming quarters.
And I think also because India is primarily an agrarian economy. So just another question, an offshoot of this, the factors affecting rural and urban demand have to be different, of course. What are the factors that you feel led to a slowdown in rural consumption?
So while it is kind of a mystery still, I don't think we have a clear reason right now. But it appears that somewhere in the middle of last year, there was this fear that inflation will go out of control, and RBI was very focused on price controls, and government also wanted to control fiscal deficit. So there was, it appears that there was some kind of a slowdown in government expenditure. There was a slowdown in monetary expansion. So we did not, so there were tighter monetary policy. We had a liquidity deficit in the system at that time, which then led to some kind of and so regulatory environment was a bit tightened. So the credit growth in the personal segment, so if you look at unsecured loans through NBFCs, unsecured loans given to people for consumption, they came down. And RBI purposefully did it because they feared that there would be, you know, defaults, and there were these concerns that this credit growth may go out of control. So that credit growth was reined in. Whenever it happens, the first impact we see is at the levels where microfinance is involved, no? At small ticket loans, 4,000, 5,000 rupees loans. So it appears on the face of it that the rural economy got the first effect of tightening of monetary policy. And that appears to have played into the slowdown in agricultural growth and the rural growth.
पुनीत, जिस तरह आपने बताया कि सबसे जब आरबीआई खासतौर पर मौद्रिक नीति में कुछ सुधार करता है या उसमें कुछ उम्मीद जगाता है, तो सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा मिलता है. क्या उद्योग जगत की भी काफी लंबे समय से शायद ऐसी उम्मीदें थी कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में या मौद्रिक नीति में कुछ सरलता करे, कुछ आसान उसको बनाए, ताकि उद्योग जगत को भी जो मौद्रिक लागत थी या जो पूंजीगत लागत थी उसमें कुछ राहत मिले? क्योंकि ठीक है, स्थिति सही चल रही है, जीडीपी के आंकड़े बेहतर बना रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको बूस्टअप करने की जरूरत थी.
देखिए अमित, जब 2022 में जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करे, तो अचानक हमने देखा था कि जब कोविड के बाद जब इकोनॉमिक ग्रोथ आई, और अचानक 2021-22 में वो इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत तेजी से ऊपर आने लगे थे, 7%, 8%. अमेरिका तक में हमने 9% की इन्फ्लेशन रेट देखा. तो उससे सभी जो सेंट्रल बैंक थे वो काफी चिंतित हो गए थे कि इन्फ्लेशन कहीं हमारे हाथ से बाहर ना निकल जाए, और बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, ना सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया में. और हमारे यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो फिर भी मैं कहूंगा काफी उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, रोबस्ट था. लेकिन वो लगातार जो एक बहुत हाई रेट पे 6.5%, आपको पता मालूम है कि जो लास्ट रेपो रेट था,
वो भी 4.5% से 6.5%
तो बहुत तेजी से वो इंटरेस्ट रेट बढ़े थे. तो डेफिनेटली उसका जो कुछ असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ना था वो, और मैं दोबारा से कहूंगा वो डेलिबरेट था. आरबीआई जानता था इस बात को, लेकिन वो चाहते थे कि इन्फ्लेशन पहले हम कंट्रोल करें. बहुत समझदारी की पॉलिसी थी उस समय के लिए,
मतलब ग्रोथ और इन्फ्लेशन महंगाई दोनों में सामंजस्य बैठाया.
हाँ, बहुत तालमेल बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज दोनों काउंटर इंडिकेटिव है एक्चुअली. बट आरबीआई को लगा कि हमारी जो प्राथमिकता है पहले इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करें और फिर हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करें. तो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है, और अब जो आरबीआई का जो एम्फेसिस है वो ग्रोथ की तरफ.
अगर जीडीपी के जो आंकड़े हैं, तो क्योंकि हम पहले 7% की बात करते थे, 6.5%, अब 6.4%, लगभग 6.5% के आसपास है. क्या उद्योग जगत को इस सारी जो मुद्रा की उपलब्धता होगी, क्योंकि उन्होंने सीआरबी घटाया है, तो इससे जो मुद्रा की उपलब्धता होगी यानी उनको जो पूंजी मिलेगी उद्योग जगत को, उससे इन सब चीजों पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ये जो मॉनेटरी नीति की जो बैठक थी के जो मिनट्स जो सामने आए हैं, उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि जब हाउसहोल्ड कंजम्पशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों में भी बढ़त मिलने की उम्मीद है.
देखिए, जब आरबीआई ने जब इंटरेस्ट रेट कट किया था पिछली पॉलिसी में अपने, तो वो जानते थे कि अगर हम इंटरेस्ट, अगर लिक्विडिटी शॉर्टेज होती है तो इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन नहीं होता, यानी इंटरेस्ट रेट कट करने के बावजूद भी अगर पैसे की कमी है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को आगे उसका फायदा ग्राहक को नहीं मिलता. तो पहले उन्होंने लिक्विडिटी को कट किया, जब लिक्विडिटी को बढ़ाया और सीआरआर को कट किया, कैश रिजर्व रेशियो कट किया, करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपया तब आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद भी रिवर्स रेपो रेट से, वीआरआर वेरिएबल रिवर्स रेपो से, उन्होंने और करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए और डाला है अभी रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ सप्ताहों में. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन भी होगा. और यदि सच बताऊं आपको, ये जो आज मिनट्स हम पढ़ रहे हैं, ये साफ हमको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाली जो पॉलिसी आरबीआई की मीटिंग होगी एमपीसी की, उसमें हम और अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट देख सकते हैं. मैं, मुझे हैरानी नहीं होगी. देखिए, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन तो 25 बेसिस पॉइंट्स की है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 50 बेसिस पॉइंट कट भी हम देख सकते हैं.
अगला वित्तीय वर्ष जो अप्रैल से शुरुआत होगा, उसमें हमको शुरुआत में कुछ अच्छी खबर देखने को मिलेगी,
जरूर इंटरेस्ट रेट पे अच्छी खबर, ये तय है. ये अब ये देखना है कि 25 बेसिस पॉइंट पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट।
चलिए शायद बहुत सारे उद्योग जगत के साथ आम लोगों, क्योंकि अभी भी अगर आम जनता की बात करें तो उनकी ईएमआई की में बहुत ज्यादा कटौती शायद नहीं हुई और बहुत लगभग थोड़ी सी ही।
ट्रांसमिशन जो है ना शुरू में स्लो होता है, इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन अभी कट हुआ है, इंटरेस्ट रेट वो ट्रांसमिशन होने में 3 से 6 महीने लगते हैं, पर मेरा अनुमान है कि ये हम आने वाले समय में देखेंगे।
चलिए नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगातार चौथे दिन गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.6% की गिरावट से 425 अंक लुढ़ककर 75,311 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% के ही नुकसान से 117 अंक गिरकर 22,796 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई।
And now the detailed stocks coming to you in English. So the benchmark domestic equity indices today ended the last week's trading session with losses of over 0.5%, extending their downslide to the fourth consecutive session today. The 30 share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, declined 425 points to close at 75,311. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, dropped 117 points to settle at 22,796. The broader market indices at the BSE ended in negative territory. The mid-cap index shed over 1.1% and the small-cap index fell over 0.4%. In the Sensex index, 21 out of 30 companies logged losses. Among the top laggards, Mahindra and Mahindra tumbled 6%. Adani Ports slipped over 2.5% and Tata Motors fell over 2.4%. Conversely, among the top gainers, Tata Steel surged over 1.8%, Larsen & Toubro rose 1.1%, and HCL Tech gained over 0.7%. In sectoral indices at the BSE, except metal, which added 1.23%, all other sectors logged losses. Among the top laggards, auto lost 2.6%, healthcare slipped 1.6%, and consumer discretionary fell almost 1.5%. Meanwhile, overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,246 companies declined, 1,701 advanced, and 113 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 23 companies hit their 52-week high, while 91 hit their 52-week low. So, Puneet, we've been, seeing this kind of a trend for the past few days where markets are somewhere logged in around 22,000, right? What are the factors, do you think, which are not leading us anywhere? We aren't going higher. Lower maybe, yes, but higher, no, not at the moment.
So, Niharika, 2-3 things are happening. And, of course, the truth is that India has had a very good run in the markets in the last 2-3 years. So a lot of companies, the prices had run up, the valuations had gone up. And generally speaking, the consensus was that Indian stock markets are at one of the highest premiums in the world. So and we kind of justified it because we had large economic growth and we were saying that, okay, we are the fastest growing economy. So we deserve that premium. But apparently markets are not convinced so much right now. And there has been some profit booking. We all know that foreign investors have been very big sellers in the market. And over the last 1 year almost, and they've been like selling very consistently. While domestic flows have supported the market. So it appears that this confluence of factors, which are fundamental to some extent, so we did not have a very good earnings season last quarter. We have FII selling, we have overvaluation in the market. All these things, I think, combined to create the selling factor. And to a large extent, the retail investors who had been very big pillar of support for this market, to some extent, they have pulled back. So I think the markets have been sliding steadily. If you look, see what we have read today, of course, is we all focus on the headline indices like Nifty and Sensex. The truth is that these are large caps. These are large 50 companies or 30 companies. But the mid cap and small cap space, they have had a very big hit. And many mid cap and small cap stocks have actually fallen by 30, 40, 50%.
Right.
And investors have lost a lot of money there. So, yes, we are in a bit of a pickle in the markets right now.
Puneet, ek visheshagya ke taur pe ye जानना, हालांकि थोड़ा सा जल्दबाजी ही होगी, लेकिन क्या बाजार में अब बॉटम आउट की जो टर्म्स है, क्या हम उसकी उम्मीद करते हैं कि इतने के बाद, क्योंकि कहां से हमने देखना शुरू किया और 75,000 अगर सेंसेक्स आता है और अगर निफ्टी 22,000 के आसपास 23,000 से नीचे आ जाता है, ये अभी क्या कहीं कुछ चिंता की बात है? या क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और अगर आज के भी आंकड़ों की हम बात करें तो नेट में उन्होंने तकरीबन 3,500 करोड़ की बिकवाली करी है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जरूर सहारा दिया, तकरीबन 2,900 करोड़ की उन्होंने शुद्ध खरीदारी करी है। तो क्या ये जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक बहुत बड़ा जो धनराशि इकट्ठी हो रही है और जो सीधे सीधे बाजार में आ रही है, ये बाजार को संभालने में किस हद तक कामयाब हो पाएगी?
अमित देखिए, जितनी बड़ी इस बिकवाली एफआईआईज ने की है, अगर नॉर्मल दिन होते या पुराने दिन होते तो शायद बाजारों में
हाहाकार मच जाता,
धाराशाही हो जाते। पर हम आज बाजारों में अगर हम देखें तो टॉप से करीब 10-12% जो हेडलाइन इंडेक्स उसमें करेक्शन हुई है, उसको हम बहुत बड़ी करेक्शन नहीं मानते, हम बेयर फेज भी नहीं मानते। टिपिकली करीब 20% अगर फॉल होता है फ्रॉम द टॉप इन द इंडेक्स, तब हम उसको मानते हैं बेयर फेज, यानी मंदी का दौर वहां से शुरू हुआ।
मतलब अगर निफ्टी 20,000 से नीचे आता तो चिंता की बात है,
तो चिंता की बात है, तो टेक्निकली स्पीकिंग जी, क्योंकि वहां से वो बेयर फेज मानते हैं। लेकिन यदि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को देखता हूं तो वहां पर तो 20% से ज्यादा ही गिरावट आ चुकी है। तो बाजार थोड़ा सा इस वक्त मैं कहूंगा मिक्स्ड है। पर यहां पर मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि जो निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जो जिन्होंने स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं किया
जी,
पैसा उधार लेकर के इन्वेस्ट नहीं किया, यहां पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, ज्यादा रिस्क लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जो एक स्टेडी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप करते रहिए, उसमें घबराइए नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मार्केट के अच्छे हैं। थोड़ा सा विवेक चाहिए कि भाई हम किस में किन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी का काम नहीं है, मार्केट में रिस्क अभी बना हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि बॉटम आउट मार्केट नहीं हुई है, वो चांसेस है कि और थोड़ा करेक्शन हो सकती है।
अगर रेंज की बात करें तो आपके हिसाब से
हमें बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, बट मैं कहूंगा कि यहां पर जरूर हम उसके लिए तैयार रहें कि मार्केट में फर्दर फॉल आ सकता है।
So, you know, you spoke about long-term prospects, right, and retail investors. Would it be right to say that if you're investing in equity, if you're investing in the share market, the right kind of time horizon is perhaps 5 years or more, or maybe 10 years, because in the long term, markets are always bound to rise, right?
It's not given, but so we have some examples with the markets, right. Like Japan, we know that it peaked in 1992 and that mm-hmm. it never could go back to that levels for next 30 years. So those things can happen, but in an economy like India, which is growing, mm-hmm. I think, and there's no second guessing that prospect. So I think, yes, we are definitely, we have very good prospects vis-a-vis the stock markets also, but the right strategy. See, Niharika, the truth is, let's all admit this, that in the euphoria of last 2-3 years, when everybody was making money and people were making money over the top, mm-hmm. expectations were unrealistic. People were looking to double their money every year, grow their wealth by 30-40-50% every year. This can't happen. This obviously is not sustainable.
That's unrealistic.
So people were to some extent, they had unrealistic expectations, and therefore they took unrealistic risks in the market. They invested in stocks where they expected super returns, but they did not know the risk involved, they did not know the fundamentals. So I think this is a time for wise investing. People need to step back, look at what they're investing, what kind of money they're investing. So this is a time for some kind of introspection, and look at what mistakes may have been made. So the prospects are very good, but needs some kind of a wisdom to be applied.
निवेश करें, सतर्कता से करें और समय के अनुसार करते रहें। चलिए, इसके पहले कि कुछ और सवाल पूछूं, एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट है, 86.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स कारोबार के दौरान 106.6 के स्तर पर नजर आया। पुनी, दोनों चीजों के बारे में, क्योंकि रुपए पे भी लगभग काफी दबाव बहुत दिनों से देख रहे हैं, जितनी तेजी से सेंसेक्स किया शायद उससे ज्यादा तेजी से रुपए ने धड़ाम से गिर गया, तो अभी रुपए पे कितना अंतर्राष्ट्रीय दबाव नजर आता है और कहां देखिए 86 रुपए तकरीबन 87 रुपए के आसपास अभी आ चुका है। हालांकि सिर्फ हम डॉलर के बारे में बात करते हैं, जब हम अगर यूरो के बारे में बात करते हैं, पाउंड के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे शायद थोड़ी सी स्थिति बेहतर नजर आती है।
देखिए, क्योंकि एक तो डॉलर, यूएस डॉलर की पूरी विश्व में ही जो स्थिति थी वो बहुत तेजी से बढ़ी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए और हमने डॉलर इंडेक्स जो 103 के आसपास था वो सीधा 110 वहां पहुंचा, तो उसने सारी करेंसीज को नीचे पुश किया, भारत को भी उसमें नुकसान हुआ। पर मुझे क्या लगता है कि अब ये बाजार में जो डॉलर इंडेक्स है वो अपना पीक बना चुका है. जो यूफोरिया था डॉलर इंडेक्स के लिए भी वो अपना हो चुका है और वो पीक हो चुका है. और हम देखें तो 110 से वो करीब करीब 107 अब डॉलर इंडेक्स करीब आया है. तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अब कोई भारी गिरावट हम रुपये में यहां से नहीं देखेंगे. मे बी स्मॉल फॉल्स, बट ये सब बात चल रही है कि 90 रुपये हो जाएगा डॉलर और ये सब. मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा. रुपी विल
गिरावट होती तो इस तरह
की आशंकाएं बनती हैं, बट आई थिंक रुपी शुड स्टेबलाइज.
अगर हम शेयर बाजार की और रुपए की दोनों में कुछ सामंजस्य स्थापित करने की बात करें तो क्या अगर रुपया गिरता है तो बाजार में भी कुछ घबराहट?
बिल्कुल. देखिए, अगर रुपया गिरता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट डिप्रिशिएट होती है. तो जब भी करेंसी में वीकनेस आती है तो हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग बढ़ाते हैं अपनी, या उनको ऐसी उम्मीद होती है कि करेंसी गिरेगी. तो इसलिए हमको स्टेबिलिटी जरूरी होती है जिससे कि इन्वेस्टर्स में सेलिंग न करें.
कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में उच्च स्तर की प्रतिभा और कौशल विद्यमान है जिसका निवेशकों को लाभ उठाना चाहिए. कोची में इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत की जीडीपी 4 खरब डॉलर की है जो अगले कुछ वर्षों में बढ़कर 35 खरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है. इसके कारण भारत में निवेश, विकास और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं. पुनीत, बहुत संक्षेप में, आमतौर पर इस तरह के समिट होते रहते हैं, लेकिन ये जो भारत एक उभरता हुआ एक वैश्विक जो बन रहा है वो कितनी उम्मीदें जगाता है अर्थव्यवस्था के तौर पे?
देखिए, उम्मीद अच्छी है और जो हमारी परफॉर्मेंस भी रही है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें, भारत की सरकार का काफी पुश रहा है, पॉलिसी इनिशिएटिव रहे हैं, पर और लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस भी बहुत हैं इस वक्त, क्योंकि टैरिफ वॉर्स हैं, करेंसी वॉर्स चल रही हैं, तो एक अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा है. मुझे लगता है अगले 2-3 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे इसमें.
And now let's take a look at the next story, which also happens to be about agriculture. India's agricultural exports have seen unprecedented expansion, with many products making their way to international markets for the first time. This expansion is empowering farmers, boosting rural incomes, and putting India's rich agricultural heritage on the global map. In a significant milestone for the country's agricultural exports, India successfully sent first ever shipments of premium Sangola and Bhagwa pomegranates to Australia. In a major boost to India's rice exports potential, the first consignment of red rice was sent to the USA. Our correspondent reports that from exotic fruits to traditional staples, these first ever shipments highlight the government's vision for Atmanirbhar Bharat by creating new opportunities for Indian farmers. So, you know, in this case, we've always heard of exotic fruits being imported. So, for example, avocado is a variety which is now being imported and quite a quantity at that as well. But here I see a lot of scope for great economic growth, right? And organic farming. India's organic products are being talked about everywhere. So, to start with, are there any organic farming companies which are likely to be listed? How does the economics of a farming company or an agriculture-based company work? And what opportunities do you spot in this area for the economy to grow?
So, Niharika, you will really be surprised that in India, earlier we were kind of struggling to meet the basic needs of food requirements of our population.
Correct.
Fortunately, with growth, economic growth, we are now in a position to look at higher value addition in agricultural sector. You will be surprised, and you put this question, very relevant question. We have this huge number of startups now, which are coming into the agricultural sector. They are small mm-hmm. companies with high technology, biotechnology, and now they are growing. So I've heard saffron being grown in Haryana, and you have those stories which are coming. I mean, a lot of startups are doing it. We are still waiting to see concrete results on the ground. But yes, I think the prospects are very bright, and India will not only be exporting the basic staples like rice and wheat, etc. I'm sure in days to come, we'll really be exporting highly value-added agricultural products from India.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी द्वारा जारी दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 20,360 नियोक्ताओं के द्वारा 17 लाख से अधिक कर्मचारी ईएसआई योजना में जोड़े गए हैं. इससे नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा. पुनीत, अगर संक्षेप में जानना चाहें तो क्या गैर संगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में आने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और सरकार का भी जो लक्ष्य था कि वो उनको संगठित होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ उनको मिल सकेगा?
बिल्कुल. देखिए, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, क्योंकि इसके अगर इसको देखें तो लक्ष्य यह है कि जो आउटसाइड द सोशल सिक्योरिटी है उन लोगों को हम, तो गिग वर्कर्स की बात करें, बजट में हमने बात करी जो गिग वर्कर्स हैं उनको हम सोशल सिक्योरिटी देना चाहते हैं. तो मुझे लगता है ये सारा उसके प्रति एक संदेश है कि ये उधर ग्रोथ हो रही है.
And now taking a look at the next story, India has expanded its collaboration with the United Kingdom in key areas of telecom, artificial intelligence and emerging technologies. Telecom Secretary Dr. Neeraj Mittal visited the United Kingdom and met National Scientific Advisor Chris Johnson. The Communication Ministry said this visit underscored the shared commitment of India and the UK to drive innovation in telecom and digital infrastructure, paving the way for enhanced collaboration in next-generation connectivity solutions. During the meeting, they discussed emerging technologies and their applications in 5G, 6G and digital infrastructure security. So Puneet, UK as a market, you know, seems to be quite different. And at the center of this entire discussion of technology, AI, we always tend to talk about the US, right? But how's the UK positioned in this area and what kind of a trade relation can we expect to share with them in the future?
So Niharika, as you know that we are, so UK of course is different from EU itself. So UK, we have, after Brexit, so India has to look at UK as a separate market. And the technological developments in European markets, in UK, are phenomenal. I mean, we have this scope for growth, for importing technology, exporting to UK, which is a separate market. And we are looking at FTA, the free trade agreement with UK. So I think there are tremendous possibility for growth in that area.
नफर डालने थे एशिया और यूरोपीय बाजारों पे. एशिया बाजारों में आज मजबूती का रुझान रहा. हांगकांग का हैंगसेंग 3.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और जापान का निक्केई 0.2% की बढ़त से बंद हुआ. सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती नजर आई. लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए.
And to talk about the US markets now, US stocks edged down yesterday as ongoing tariff jitters and a downbeat forecast from a leading multinational retail corporation dampened investor risk appetite. The Dow Jones Industrial Average dropped 1% and Nasdaq Composite as well as S&P 500 fell over 0.4% each. So, Puneet, do you have a comment on the U.S. markets?
So, U.S. markets, of course, have been ruling at record highs levels. And I think there's some slight pullback there, largely because of Walmart warning yesterday. But let's see how it plays out.
And also to talk to you about crude oil. Oil prices fell today but were on track for a weekly rise due to concerns over supply disruptions in Russia. Meanwhile, the US's commercial crude oil inventories increased by 4.6 million barrels to 432.5 million barrels in the week ending 14th February, while gasoline and distillate inventories fell last week as seasonal maintenance at refineries led to lower processing, according to data released by the Energy Information Administration. Brent crude was trading down over 0.9% at $75.78 per barrel, and WTI crude also lost over 0.9% to trade at around $71.76 per barrel when reports last came in. Puneet, lots happening here as well, you know. So Russia is once again in the limelight. Your thoughts on this?
So clearly, I think, like you said, I mean, oil market is really in a flux right now because of the news coming from USA, what is happening on Russia-Ukraine forefront. So overall, I think they're very volatile. But again, if you see, crude oil prices have been very narrow range. So hopefully, I think they'll remain stable in days to come.
नफेडल लेते हैं सराफा बाजार में. सराफा बाजार में सोना 0.2% की गिरावट से 86,070 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. चांदी भी मामूली गिरावट से 97,360 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना मामूली गिरावट से 85,854 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर चल रहा था. पुनीत, अगर हमने अभी बात करी जैसे डॉलर और रुपए के टर्म्स में, अगर सोने की बात करते हैं, सोने ने भी निवेशकों को बहुत उम्मीदें जगाई थी. और अगर ये बात की जाए कि सोने ने निवेशकों को कितना आर्थिक लाभ पहुंचाया है, तो वो तो कहने की बात ही नहीं कि कितना वहां से सोने की चमक बढ़ी है. 90,000 या 1,00,000, चांदी भी 1,00,000 के स्तर को छू गया चुकी, सोना भी 90,000 के आसपास पहुंच चुका. अभी कितनी चमक बनती है अगर हम डॉलर इंडेक्स 106 से नीचे गिरता हुआ देखते हैं?
देखिए, एक तो जब डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है तो सोने के दाम बढ़ते हैं. तो और उस ऊपर से अगर हम देखें अमेरिका में जो हो रहा है, टैरिफ की बात चल रही है, गोल्ड के ऊपर भी, गोल्ड इंपोर्ट्स पर वहां टैरिफ की बात चल रही है, तो ऐसा लगता है कि गोल्ड में भी जो मजबूती है बनी रहेगी. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर आई थिंक द लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉर गोल्ड इज ऑन द अपसाइड.
चांदी और सोने में हमेशा ये होड़ लगी थी, अगर भारतीय लोगों की बात करें कि कौन पहले 1,00,000 के स्तर को छूता है, तो चांदी ने तो छू लिया. लेकिन चांदी के भी कहते हैं कि अगर एक साल की बात करें या दिवाली तक, चांदी भी बहुत उछाल मार सकती है, क्योंकि चांदी में उतनी तेजी अभी नहीं आई जितनी की सोने में आ चुकी.
देखिए, चांदी और सोने में एक रेशो आप मालूम है कि एक रेशो चलती है और वो भी चांदी थोड़ा लैग कर रही है. ये पॉसिबल है कि चांदी का भाव एकदम तेजी से बढ़े, बट मुझे लगता है दोनों सोना और चांदी का जो ट्रेंड रहेगा अगले एक वर्ष वो तेजी का रहेगा. अब वो कितनी तेजी किस मेटल में आती है वो देखना पड़ेगा.
पुनीत, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा इतने सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद अमित.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
Well, many thanks for joining us, Puneet, this evening. And before we close, a reminder of the headlines for you. RBI's February meeting minutes highlight easing of monetary policy likely to boost household consumption, investment in housing and capital expenditure. Benchmark domestic indices register a fall of over 0.5%. Sensex drops 425 points, Nifty closes below 22,800. And global crude oil prices fall, Brent crude trades at $75.78 per barrel. And well, with that, that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.